الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے کے ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکال کے نیکیوں کے بیج بو سکیں. ہمارے اسلاف اس قدر باریک بینی سے اپنی غلطیوں کو پکڑنے کی فکر میں رہتے تھے. ہمیشہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم کیسے اپنے اندر سے برائیاں نکالیں. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مومن اپنا احتساب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جتنا کوئی ساجیدار یعنی پارٹنر اپنے پارٹنر کا کرتا ہے. انسان اپنے پارٹنر کے اوپر بڑی نظر رکھتا ہے نا، بزنس پارٹنر ہو لائف پارٹنر ہو. تو یعنی مومن اس سے بھی زیادہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. جیسے ہم لوگوں کی غلطیاں پکڑتے نا، فلاں دیکھو ایسا، فلاں نے یہ کیا، فلاں وہ، اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر یہ برائی. تو جیسے ہم لوگوں کی غلطیاں پکڑنے میں اور ان کو دیکھنے میں کتنی باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہمیں اس سے زیادہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان کی غلطیوں کی پوچھ ہم سے نہیں، ہم سے ہماری غلطیوں کا حساب ہوگا. ربیع بن حسیم کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے سے جمعے تک اپنی باتیں لکھا کرتے تھے، اگر وہ باتیں ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اور اگر کوئی بات بری ہوتی تو استغفار کرتے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا عمل ہے. میں تو کل کی بات کی بھی بھول جاتی ہوں کہ زبان ایسے چلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں. اللہ اکبر. سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا جس کی مغفرت کی دعا میں آج تک کرتا رہتا ہوں. یعنی اپنے گناہوں کو دیکھتے رہنا، ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کو جس کے اندر باریک بھی نہیں ہوگی نا وہ ہی پکڑے گا اپنے گناہ کو. اور جو دوسروں کے عیب ہی دیکھنے میں لگا رہے تو اس کو اپنی کیا فکر رہے گی، یا اپنے لیے اس کو کہاں وقت ملے گا جو دوسروں کو ڈسکس کرتا رہے. کچھ نوجوانوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، چپکے سے کچھ کھانے میں مشغول ہے. اس بوڑھے کے پاس جا کے بولے، چچا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے روزہ رکھا، صرف پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں. نوجوان ہنس پڑے، بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی پہ بری نظر نہیں ڈالتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، حرام مال نہیں کھاتا، اپنے فرائض دیانتداری سے نبھاتا ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں. لیکن چونکہ مجھے شدید بیماری ہے اس لیے اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکا. یعنی معدہ روزے دار نہیں ہے، باقی سارے اعضاء روزے سے ہیں. پھر اس بوڑھے آدمی نے نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ کا بھی روزہ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے سر جھکا کے آہستگی سے کہا، نہیں، ہم صرف کھانا نہیں کھاتے. دیکھ لیں نا کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارا روزہ ہے، ہم نے پانی نہیں پیا تو ہمارا روزہ ہے، باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. حالانکہ دیکھیں، روزہ تو سارے اعضاء کا ہونا چاہیے تھا، سارے اعضاء کو برائیاں چھوڑنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ بڑی پیاری کسی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا واجب تر ہے، مور امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ انسان کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو بھی گیا تو بعد میں توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، توبہ کر لیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تم اپنے پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں سے مٹا لیں، یہ وہ وقت ہے. اللہ اکبر. اور اس کے لیے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ ہوتا ہے. یہ بادشاہ ہی اگر کرپٹ ہو گیا تو باقی اعضاء کا کیا حال ہوگا. اور دل کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے، فورٹ، اور دشمن किले में दाखिल होना चाहता है। दुश्मन कौन है हमारा? शैतान। अब वो कैसे दाखिल हो सकता है उस, वो यहाँ पे हुकूमत करना चाहता है हमारे दिल पे, हमारे दिल में अपना डेरा जमाना चाहता है। तो कैसे हम उसको एंटर ना होने दें, क्या करें किले की हिफाजत करके? ऐसे ही होता है ना, दुश्मन से हिफाजत की जाती है। पहले जमाने में किले होते थे, उनकी इतनी हिफाजत होती थी, गेट्स होते थे, उनके बंद कर दिए जाते थे। इसी तरह हमारे दिल के भी कुछ गेट्स हैं, उनको बंद करने की जरूरत है, वरना दुश्मन अंदर आ जाएगा। अब वो दरवाजे कौन से हैं? अगर इनकी पहचान नहीं है और उनके ऊपर आपने निगरानी नहीं रखी हुई, तो बड़ी आसानी से शैतान अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर आपने वो गेट्स खोल दिए, तो शैतान ऐसे ही नहीं आ जाता जब तक उसको रास्ता ना मिले, जब तक दरवाजा ना खुला हुआ उसको नजर आ जाए। और जानते हैं ये दरवाजे क्या हैं? ये वो बदखसलतें हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हसद है, हिर्स है, कीना है, गुस्सा है, रियाकारी है, दुनिया की मोहब्बत है, ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, इनकी मोहब्बत है, बदगुमानियां, ये सब चीजें वो दरवाजे हैं। अब अगर किसी ने हसद का दरवाजा खोल दिया, तो उसने अपना नुकसान कर लिया। इसलिए कि जब ये दरवाजा खुल जाएगा, तो फिर शैतान एंटर हो जाएगा। हमने कभी इसे सोचा? हम किसी से हसद करते हैं तो हम से सोचते हैं कि पता नहीं हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमने अपना बड़ा नुकसान कर दिया। एक दरवाजा खोल दिया तो शैतान अंदर आ जाएगा, और उसके बाद फिर कई दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है? और फिर देख, इसीलिए आप देखते हैं ना कि फिर जुबान से भी बुरी बातें निकलने लगती हैं, गइबतें होने लगती हैं, फिर इल्जाम तराशियां होने लगती हैं, बोहतान बनने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो असल प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो अंदर है, क्योंकि अब हमने स्पेस दे दी शैतान को आने के लिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह ये जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात, इन इंसान बाज दफा इन ख्वाहिशात में इस कदर आगे बढ़ जाता है, और इतनी मोहब्बत इनकी होती है कि इंसान इनका गुलाम बन जाता है। इसको भी कुराने पाक बताता है कि जो अपनी माबूद, अपनी हवा को बना लेता है, अपनी यानी ख्वाहिशात नफ्स को बना लेता है अपना माबूद, उसकी पूजा शुरू कर देता है अल्लाह की छोड़ के, फिर वो अल्लाह का गुलाम नहीं रहता। फिर ख्वाहिश कभी उसको कहीं ले जाती है, कभी कहीं ले जाती है। बस ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मेरा जी ये चाहता है, मेरा मेरी मर्जी ये है। तो जब इंसान इसमें पड़ जाता है ना, तो वो फिर अपनी सारी कुव्वतें, अपनी सलाहियतें, अपना पैसा, अपना वक्त, सब ख्वाहिशात के पीछे लगा देता है। अब वो ख्वाहिशात चाहे खाने पीने की हो, चाहे पहनने ओढ़ने की हो, चाहे और कमाने की हो, एक फिर धुन उसके ऊपर सवार हो जाती है। फिर वो ये नहीं देखता कि ख्वाहिश हलाल है कि हराम है, या क्या इसका रास्ता होना चाहिए। वो कहता बस मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ये भी एक बीमारी है, दिल की बीमारी। और इंसान बड़ा ही आसान शिकार बन जाता है शैतान का, जब उसके अंदर ये बीमारी आती है कि वो ख्वाहिश का बंदा हो जाता है। अब देखिए, दिल तो कुछ भी करने लगेगा, कुछ भी चाहने लगेगा। कभी आपको एक ख्वाहिश आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर ती अभी एक पूरी नहीं होगी तो दूसरी आ जाती है, दूसरी नहीं पूरी होती तो तीसरी आ जाती है। तो इसको ब्रेक लगाने की जरूरत है, और ये महीना है अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू करने का। ठीक है ना, हमने खाने पीने पे अपने आप को ब्रेक लगाई भी है, हमने बहुत ज्यादा सोने से ब्रेक लगाई भी है। तो ये महीना ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का महीना, अपने नफ्स पे काबू पाने का महीना। ये महीना वो है जिसमें हम खुद को डिसिप्लिन करें, वरना जो ख्वाहिशात के पीछे चलता है वो उस आदमी की तरह है जो समुंदर से पानी पीने लगता है, लेकिन जितना पीता जाए उसकी प्यास बढ़ती जाती है। आप इसीलिए तो एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो अभी एक नहीं पूरी हुई दूसरी आ गई, दूसरी नहीं पूरी तीसरी आ गई, इसका एंड कहाँ है? इसका कोई एंड नहीं है फिर। ये नहीं मतलब कि हम कोई ख्वाहिश ही नहीं कर सकते, ये ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, हलाल हराम की तमीज रखते हुए अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से फायदा उठाना, अपनी जान को अपने जिस्म को मुनासिब आराम देना, आखरत की खेती दुनिया को समझते हुए इसकी इसको कदर की निगाह से देखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस दुनिया में मैंने रह के अमल करना है तभी मेरी आखरत बनेगी, कोई हर्ज नहीं है इन बातों में, ये ख्वाहिशात का गुलाम होना नहीं है। हाँ, जब दुनिया की जिंदगी में माल और मता की दौड़ लग जाए, ओहदे और कुर्सियों के पीछे इंसान भागने लगे, लग्जरीज हासिल करने की हिरस इस पे इतनी गालिब आ जाए, उसको याद ही ना रहे मैं किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया, मुझे वापस जाना है, मेरा हिसाब होना है, तो ये फिर तबाही का पैगाम है कि बस यही सवार रहे, बस एक ही धुन है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था ना कि आप सुबह उठते हैं तो क्या चीज़ आपके जहन में आती सबसे पहले, वहीं से आपको पता चल जाएगा मैं अपनी ख्वाहिशात की बंदी हूं या किसकी हूं, अल्लाह ताला याद आता है या कुछ और, नमाजों में क्या याद रहता है, रात में आंख खुलती है तो क्या याद आता है, तन्हाई में बैठती हैं तो क्या सोचें आती हैं, आपको पता चल जाएगा। वरना वैसे तो हर कोई कहना जी हम तो ख्वाहिशात के गुलाम नहीं है, हम कहाँ, हम तो अल्लाह के ही गुलाम हैं। नहीं, अगर इन मौके पे आप अपने आप को चेक करें तो तब आपको पता चलेगा मैं किसकी गुलाम हूं। तो बड़ी एक फाइन लाइन है, उसको क्रॉस करते हुए इंसान को पता नहीं चलता कि कब वो ख्वाहिशात का गुलाम बन गया। तो बस ये देखें कि ये जिंदगी बस ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह ना रह जाए, कि हम यही सोचें कि भाई ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, ये नहीं पूरी हुई तो बस डिप्रेस होके बैठ गए, और अगर पूरी हो गई तो बस खुशी से उछल रहे हैं, फिर दूसरी के पीछे चल पड़े। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना, जिंदगी में कितने ही मौके ऐसे आते हैं, हमारी ख्वाहिश कुछ जाती है और अल्लाह की रजा किसी और चीज में होती है, तब हम क्या करते हैं, क्या हम मुख्तलिफ बहाने बना के, उजर दे के, मजबूरियों की बातें करके अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लग जाते हैं, या क्या करते हैं? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब हजरत उमर को खिलाफत की जिम्मेदारियां सौंपी थी तो कुछ कीमती नसीहतें उनको की थी, जिनमें एक ये भी थी कि नफ्स को काबू में रखना, क्योंकि नफ्स की एक बात पूरी करोगे तो दूसरी के लिए पांव फैला लेगा। समझ आई? एक बात पूरी आप करते हैं, दूसरी चीज पहले ही तैयार खड़ी होती है। तो इसलिए हमने अपने आप को चेक करना है, लेकिन जरूरी नहीं हर बीमारी हर एक में हो, लेकिन जरूरी है कि अपना वो आपको जब आप किसी बीमारी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास ना, तो आपको कितने टेस्ट लिख देते हैं चेक करने के लिए कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, फिर उसको रूल आउट कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई ये नहीं है इसके अंदर। तो हम अपने आप को चेक जरूर करें, क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर ऐसी हैं कि हमने उनको निकालना है। तो इसलिए अपनी ख्वाहिशात को लिमिट करें, जितनी ज्यादा होंगी और जितने हम उनके पीछे भाग रहे होंगे, याद रखें जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये नहीं खत्म होनी। ओके, आपको एक चीज मिलती है, आपको मसलन आपके पास पहले एक छोटा अपार्टमेंट था, उसके बाद ख्वाहिश होती है हाय घर हो जाए, घर हो जाए, घर मिल गया, 2 कमरे का घर भी काफी है मेरे लिए, मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूंगी अगर घर मिल जाए, 2 कमरे का घर मिल गया, आपने शुक्र अदा किया, और फिर अब कह रहे हैं नहीं अब 2 कमरे ने ये नहीं सही लगते, अब 4 का होना चाहिए, फिर 4 भी कम, फिर 6 का होना चाहिए, फिर एक और वेकेशन हाउस होना चाहिए, फिर और जमीनें जायदादें भी तो होनी चाहिए। यानी इंसान देखो कहीं रुकता नहीं, फिर वो इस दौड़ में ऐसे लग जाता है, ऐसे फंस जाता है कि शैतान इसी में उसको उसको लगाए रखता है। इंसान भूल ही जाता है मैं क्यों आई, मैंने क्या करना था। तो उस तरफ तब सोचेगा ना जब ये भूत दिमाग से उतरेगा। तो जिसको ये याद हो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। कहीं ये नहीं कहा खुद को भूख से बचाओ, प्यास से बचाओ, कहीं ये नहीं कहा कि छोटे घर से खुद को बचाओ, कम कपड़ों से खुद को बचाओ, ज्यादा होने चाहिए, कम जेवरों से खुद को बचाओ, जेवर कम होंगे तो हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए और फिर कुछ भी ना हो। ऐसा कुछ चीजों के लिए नहीं फरमाया कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। सलमान फारसी ने जब ये आयत सुनी थी तो निकल खड़े हुए, 3 दिन गुजर गए, किसी को नहीं पता कहाँ चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ढूंढो सलमान को कहाँ चला गया, तलाश किया गया तो पहाड़ों में बैठे रो रहे हैं। मट्टी डाल रहे हैं अपने सर में, क्या है वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, ये कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मेरा क्या हाल होगा। तो साहबा लेके उनको चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपने पूछा क्या बात है, फरमाया या रसूलल्लाह इस आयत ने मुझे बेकरार कर दिया। आपने फरमाया नहीं, तुम उनमें से नहीं हो, तुम तो वो हो जिसके लिए जिसको जन्नत भी चाहती है। तो जिनको जन्नत चाहे वो रोते हुए जंगलों में निकल जाए, और जिनको पता ही नहीं है पता नहीं आगे है क्या, वो बेपरवाह फिरते रहे, वो मजे की नींद सोए। जिनको ये नहीं पता हमने आगे दिखाना क्या है, हमारे पास पूंजी क्या है, जिन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ जहन्नुम से बचने का, वो मजे करे और उनको कोई फिक्र ही नहीं है दिल किधर जा रहा है क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुहासबे करने हैं इससे पहले कि हमारा हिसाब किया जाए। बेहतर नहीं हम खुद ही हिसाब कर लें अपना, कुछ पता तो चले हम कहाँ खड़े हैं। ये कहना बड़ा आसान है कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं है बस, क्या नहीं देखें अपनी पूंजी देखें, क्योंकि आगे चेकिंग होनी है क्या है आपके बैग में। अगर कोई मुसाफिर है उसने अपने बैग में कोई गलत चीजें डाली हुई है, कोई हीरोइन चर्स डाली हुई है, तो उसको निकालनी चाहिए ना पहले, इससे पहले कि आगे चेकिंग हो। इसी तरह ये हमारे दिलों की गंदगियां इनको निकाल दें यहीं पे, इससे पहले कि आगे चेकिंग हो और फिर पता चले ये क्या लेके आ गए। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। अच्छा हम दुआ की बात करते हैं, जो दुआएं हैं ना हम लोगों को कहते रहते हैं हमारे लिए दुआ करें। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिनसे फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। तो फरिश्ते किन लोगों के लिए दुआएं करते हैं? एक सहरी खाने वालों के लिए वो दुआएं करते हैं। तो सहरी का एहतमाम ज़रूर कीजिए, चाहे एक घूंट पानी ही पिए लेकिन सहरी करें। और सहरी बेहतरीन वो है जो रोज़ा बंद होने से पहले की जाए, ये नहीं कि आप रात को ही खा लें कहीं सहरी हो गई, चलो वो भी ठीक है, लेकिन उस वक़्त की सहरी बेहतरीन है। उस वक़्त फरिश्ते दुआएं करते हैं सहरी खाने वालों के लिए। दूसरी और किसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं? वो जो इंसान जा नमाज पे बैठा है, नमाज पढ़ के फारिग हो गया, जब तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है और उसका वुजू नहीं टूटता, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। इसी तरह फरिश्तों की दुआएं अगर हमें चाहिए तो एक और तरीका भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान सुबह के वक्त अपने मुसलमान भाई की बीमार कुर्सी करता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए भलाई और रहमत की दुआएं करते हैं। और अगर शाम के वक्त बीमार कुर्सी करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। ठीक है, तो इतने फरिश्तों की दुआएं मिल जाती हैं। जब इंसान किसी बीमार की बीमार पुरसी करता है, इसी तरह एक और तरीका है। जब देखें कितने सारे तरीके हैं फरिश्तों की दुआएं लेने के, उस पाक मखलूक की दुआएं लेने के, तो हम लोगों को कहते रहते हैं, वो पता नहीं याद भी रखते हैं या नहीं रखते। हमारा रुआ रुआ गलतियों के अंदर और खताओं के अंदर डूबा हुआ, अल्लाह ताला लेकिन इतना करीम है कि फरमाता है कि मुझसे बड़ा कोई सखी हो सकता है, कि मैं तो अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता हूँ जो मेरी तरफ चल पड़ता है, चाहे सारा दामन गुनाहों से आलूदा हो चुका हो और रुआ रुआ उसको गुनाहों में जकड़ा हुआ हो, लेकिन जब वो मेरी तरफ चल पड़े तो मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इतना करीम। एक और हदीसे कुदसी है, फरमाया या ए इब्ने आदम, तू मुझे भूल जाता है, मैं तुझे याद रखता हूँ, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डालता हूँ, तू फिर भी दलेर होके गुनाह करता रहता है। लेकिन कितने ही हमारे गुनाह अल्लाह ने मखलूक से छुपाए हैं, लोगों को नहीं पता, हमें पता है, तो अल्लाह ही है ना छुपाने वाला। अभी भी हम करते रहते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा। अल्लाह अकबर, तो वाकई इंसान भूल जाता है, मगर वो रब उसके ऊपर इतना मेहरबान है कि उसको खिलाता भी है, पिलाता भी है, सांस भी उसकी चलाता है, उसका मेदा भी चलता है, उसकी आंखें हाथ पैर सब चलते हैं, चाहे वो रब को भूला ही हुआ हो। तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी की जरूरियात पूरी करता है, चाहे वो अल्लाह को मानता नहीं है और उसकी माफी का इंतजार करता है, और उसकी माफ करने के अंदाज भी निराले हैं। फरमाता है इतने गुना कोई कर ले, इतने कर ले कि आसमान तक पहुंच जाए और सारी जमीन भर जाए गुनाहों से, फिर भी घबराना नहीं, फिर भी ना उम्मीद ना होना, बस कह देना अल्लाह हमें माफ कर दे तो मैं माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी, बशर्ते कि मेरे साथ शिर्क ना किया। तो जो इतना करीम रब है, फिर भी इंसान का हाल ये हो कि सोच सोच के तौबा करे, तौबा को डिले करता रहे, नहीं, अभी बस अभी नहीं, इस गुनाह को अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं इससे तौबा करनी, और जब हज पे जाएंगे तो फिर एक ही दफा तौबा करेंगे, क्या पता है कि जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर तौबा कर लेंगे, अभी तो मैंने बड़ा फन करना, तो तौबा को डिले ना करें, कम से कम आज तौबा कर लेंगे तो आज साफ सुथरे तो हो जाएंगे, अगर जाने का वक्त आ गया तो कम से कम इंसान तौबा करके दुनिया से गया होगा। हमारी एक स्टूडेंट लास्ट ईयर, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, रमजान गुजरा तो उसके बाद ही उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और एट द स्पॉट वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो देखिए, और वो कहती थी कि मेरा ये रमजान इतना प्यारा गुजरा है, तो मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं कितनी उन्होंने तौबा की हो, अल्लाह ने उनको साफ सुथरा करके हो सकता है उठाया है। तो इंसान का कोई पता नहीं है, इसलिए तौबा में जल्दी करनी चाहिए। और ये दुआ इतनी प्यारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को सलाम फेरने से पहले भी नमाज में भी इस दुआ को मांगा करते थे। और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म कर लिया, जुल्मन कथीरा, बहुत ज्यादा जुल्म किया। और जुल्म किया है इंसान का, अपने साथ क्या जुल्म है, हम सोचते हैं ना दूसरों के साथ कोई जुल्म करता है, नहीं, जब इंसान गुनाह करता है ना, सबसे ज्यादा जुल्म वो अपने साथ करता है, किसी को और के साथ तो बाद में है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह गुनाह को कोई माफ नहीं कर सकता मगर तू, इसलिए कि हम कहीं किसी के पास भी चले जाए, किसी इमाम साहब के पास चले जाए या क्रिश्चियन लोग अपने पादरियों के पास जाते हैं कि कन्फेशन हो जाए और फिर उसके बाद वो उनको माफी का परवाना देते, नहीं, कोई इंसान नहीं माफ कर सकता, अल्लाह तू ही है जो माफ कर सकता है, बख्शिश तेरे पास है, अल्लाह चाहे हमारे आमालनामे को बिल्कुल गुनाहों से साफ कर दे कि उसके अंदर कोई गुनाह ही नहीं नजर आए, अल्लाह चाहे तो, लेकिन हमारी एक्सेस नहीं है। देखिए, हम चाहे ना कि हम जाके अपने नामाए अमाल से अपनी गलतियों को धो दें, साफ कर दें, बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी को पता ही ना चले। हम नहीं कर सकते, हमारी रीच ही नहीं है, क्या हमारी नहीं पहुंच, तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हो सकता है। ये अल्लाह ताला कुन कह दे तो मिट जाएंगे सारे गुनाह, अल्लाह फरिश्तों को भुला दे वो भी भूल जाएंगे, अल्लाह उस जमीन को भुला दे जहां हम गुनाह किए। तो अल्लाह चाहे तुम्हारे गुनाहों को इस तरह साफ कर दे कि किसी को पता ही ना हो, किसी को भी याद ना रहे, और कयामत के दिन खोले अपना अमाना हो तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो अल्लाह कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता, मगर तू फिर ली बस मुझे माफ कर दे, मगफिरत में देखा अल्लाह अपनी खास बख्शी से मुझे माफ कर दे जो तेरे पास है। वरहमनी, और अल्लाह मुझ पे रहम कर दे, इन्नक अंतल गफूरुर रहीम, कि बेशक तू बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। तो बहुत ही प्यारी ये दुआ है, इसमें अपनी आजी भी है, कन्फेशन भी है, मैं इतराफ़ करती हूँ कि मैंने गलत किया है, ये भी इतराफ़ है कि अल्लाह तू बड़ा है, तू ही माफ़ कर सकता है, तो माफ़ कर दे, रहम भी कर दे, क्योंकि तेरे तो नाम ही है गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला हम सब को तौबा की तौफीक दे, सच्ची तौबा, हम सबको माफ़ फरमा दे। इस प्यारे महीने में अगर माफ़ी ना मिली तो बड़ा ही खसारा है, लिहाजा कोई वक्त निकाल के अकेले बैठिए और अल्लाह ताला के सामने अपनी आजजी का इजहार कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको ये बात बताई कि उन्होंने फरमाया कि 40 साल पहले मैंने जो गुनाह किया था उसके लिए आज भी बख्शीश मांगता हूँ। तो जो भी जहन में आते हैं उन गुनाहों को याद करके और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो माफ़ कर देगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।